राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 21 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम
राम राम राम राम पराकृष्णवद्वंदं परम ब्रह्म राधिके सौंदर्य सारस्वतं प्रपन्न पारिजाताय कौसुमे श्री कृपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीताय नमः। वासुदेव सुतं देवं कलशचानूरवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णमाते जगद्गुरुं वंशीभूषितपरां भवनीतराभात् गीताम्बराधरणदं बहलाधरोष्ठात् हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते नारायण गीता का एक दूसरा अध्याय चल रहा है, 38 श्लोक हुए हैं। 38वें में एक बात बताई, अगर ये कहाँ गए, अच्छा आरंभ, अच्छा भाई चार आरंभ है, हमें तो वही याद जो वहां कहते थे ना कहते थे, हमारे तो पोल निकल गया भाई, नारायण नारायण नारायण। 18वें अध्याय में खास बात बताते हैं, 17 अध्याय कह दिए, 17 अध्याय में क्या बात आई है वो सुन करके अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि आपने दो निष्ठा कही, ऐसा भी सांख्य बुद्ध ने योग्य थी मान सुनो, ये सांख्य में कही और बुद्धि योग सुनो, कोई दूसरे अध्याय के प्रसंग नहीं। उसका 30 अध्याय के लोग दुविधा निष्ठा पूरा प्रोता मया नगर, दो निष्ठा मैंने कही है, तो दो निष्ठा कही है तो ज्ञान योगे न सांख्य नाम कर्म योगे न योगे नाम। ये बातें सुनते सुनते अर्जुन के मन में आया कि जब दूसरा अध्याय में ये कहता ये साथ बेहतर सांख्य जो अभी विचार कर रहे थे ना सुखदेव समय कृपा, तो ये सुनता सांख्य में कि योग में सुनो, तो वहां भी सांख्य योग दो बात बताई। व्यावेश वचन है उनसे बुद्धि मोहित होती है, ऐसे 30वें अध्याय में कहा, तो वहां में बताई कि लोग इसमें द्विधा निष्ठा पूरा प्रबंधन दो निष्ठाएं कही है। तो अर्जुन उस तत्व को जानना चाहते हैं कि संन्यास से महाबाहो तत्व मिथ्या मेरी तुम, संन्यास का तत्व जानना चाहता हूँ और त्याग से और त्याग कर, तो सांख्य को हो संन्यास को एक ही बात है, और त्याग को हो योग को हो कर्म योग को हो ये बात है। तो संन्यास से माओ संन्यास जो सांख्य योग है उसमें मैं तत्व जानना चाहता हूँ कि सांख्य योग का क्या तत्व है, और त्याग से और त्याग का भी तत्व जानना चाहता हूँ। ऋषिकेश भगवान जी कह रहे सीख नाम इंद्रियों के मालिक हो आप अंतर्यामी हो, इन दोनों का पृथक पृथक जानना चाहिए, अलग अलग सांख्य योग क्या है कर्म योग क्या है अलग अलग, कैसी निशोधा कैसी दाती को मारने वाले, तो विघ्नों को दूर करने वाले अंतर्यामी योग सच्ची प्रेरणा करने वाले और महाबाहो समझ आपसे ये मैं आज पूछता हूँ बताओ। तो भगवान कहते हैं भाई दो निष्ठा है, उन दो निष्ठा का वर्णन इसमें पृथक पृथक बताया है 18वें अध्याय में। पहले त्याग का तत्व तो बताया 12वें श्लोक तक, और 13वें से लेकर 40वें तक भगवान ने सांख्य योग की बात कही, और 41 से 48 तक फिर कर्म योग की बात बताई, और 49 से 50 तक फिर सांख्य योग की बात कही। तो पृथक पृथक कहना इस बात, पहले कर्म योग की बात, 13 से 40 से सांख्य योग की बात, और 41 से 48 तक फिर कर्म योग की बात। तो कर्म योग की पहले कह दी थी कि पहले कही थी कर्मों में जिसमें उपासना नहीं है, केवल त्याग है उसकी बात 12वें श्लोक से कही, उसमें उपासना नहीं आई है। और सांख्य योग का वर्णन किया 13 से 40 तक किया, उसमें भी उपासना नहीं आई है, विवेक प्रधान विचार प्रधान ये कहे। इसके बाद सांख्य योग का वर्णन किया तो 59 तक सात श्लोकों में ध्यान योग पर ध्यान की बात बताई, यहाँ विवेक की बात बताई। ध्यान से भी उस तत्व को प्राप्त करते हैं, विवेक से भी अलग अलग सांख्य से भी प्राप्ति हो जाती है, जैसे ये अलग अलग जाने में मनुष्य ये थम्भ है अलग अलग है ऐसे। इसके बाद 56 से 66 तक भगवान ने फिर भक्ति की बात बताई, सांख्य और कर्म योग है इनसे विलक्षण है भक्ति, गीता के देखने से एक विशेष बात मालूम होती है। सांख्य योग और कर्म योग ये तो दो निष्ठा है मनुष्यों की, और भक्ति इससे विलक्षण है, वो है भक्ति करने वाला भगवान निष्ठ, वो सांख्य और योग का नहीं, उनकी खुद की निष्ठा नहीं है। कर्म योगे योगी नाम कर्म ज्ञान योगे सांख्य नाम, तो उनकी निष्ठा है वो तो मनुष्यों की, इसकी निष्ठा है भगवान की, तो भगवान निष्ठ है वो। तो 56 से 66 जो प्रकरण है ये 11 श्लोकों का बहुत भक्ति से लबालब भरा हुआ है, बहुत विलक्षण है। आप उसे समझे तो अपने अपने पास में है ही, साथ संजीवनी का 56 से 66 से 11 श्लोकों का प्रकरण आप पढ़े, मूल पढ़े टीका भी पढ़े, इसमें गीता का बहुत विशेषता से विवेचन किया है भगवान ने भक्ति का। एक बात और ध्यान में लाने के लिए बताता हूं, कर्मयोग है ये लौकिक बात है, ये भौतिक है, ये सांसारिक साधन है। गृहस्थ को संसार को सच्चा मानते हैं, वे सच्चे मानने में भी रहने वाले भी इस तरह से चले तो उनका कल्याण हो जाए, कि विलक्षण बात है। और सांख्य योग है जो ये जितने जीव है ना प्राणी, इनका जो स्वरूप है चेतन आत्मा, इनका विवेक करने वाला है सांख्य योग। ज्ञान योग सांख्य है ना, वो ज्ञान योग, इसका ज्ञान प्राप्त करना, संसार की सेवा करना, अपने आप को जानना, वो जानने की बात, उसका नाम है सांख्य योग। तो आत्मज्ञान के लिए सांख्य योग है, और ये दोनों प्रकृतियां जिसकी है, अपरा प्रकृति का होगा कर्मयोग, परा प्रकृति का हो गया ज्ञान योग, और स्वयं भगवान का हो गया भक्ति योग, दोनों वाले अपरा परा प्रकृति मेरी मेरी परा अपरा दूसरी मेरी परा प्रकृति। और अहम कृष्ण से जगत का प्रभाव, संपूर्ण जगत का प्रभाव और प्रलय हूं, ऐसे भगवान की बात है, वो दो निष्ठाओं से अलग है, वो भगवान निष्ठ है। विचित्र बात है, हम तो एक विचार करते हैं तो गीता में बड़ी विलक्षण विलक्षण बातें दिखती है, हमारे नई नई बातें पैदा होती दिखती है, विचित्र विचित्र बातें। तो ये एक विलक्षण बात आपको बताई। तो 56 से 66 तक उस भक्ति का वर्णन है, विशेषता है, और 66 के बाद गीता का महात्म्य है। गीता किन को कहनी चाहिए, किन को कैसे करना चाहिए, ये बात बताई विशेषता से भगवद गीता में। उनके प्रचार की, सुनने की, कहने की, प्रचार के प्रसार करने की महिमा है, वो बात के उपसंहार किया है। ऐसे 18वां अध्याय है। अब ये बात बताई कि संन्यास और त्याग दो है, इनमें दूसरों के मत बताते हैं। एक तो अपने मत का वर्णन हो, एक दूसरों के मत का वर्णन हो जाए। पंडित लोग अच्छे अच्छे समझदार त्याग के विषय में और योग के विषय में क्या कहते हैं, ये गीता की विलक्षण बात है। एक बात याद आ गई, को खास विशेष काम की नहीं पर याद आ गई। लोग कई कहते हैं कि गीता भागवत आदि का अर्थ समझना हो तो पहले तुम प्रक्रिया ग्रंथ पढ़ो, वेदांत की प्रक्रिया, ये समझ में आएगी। ये बात एक श्रद्धा से भक्ति से कहते हैं, भाई अच्छी बात है, पढ़ाई करो, पर उससे कोई मतलब नहीं है। कितना ही वेदांत पढ़ दो, अध्याय पढ़ दो, ये प्रणाली अलग है, वो प्रणाली अलग है, उसके समझने में इसका कोई विशेष महत्व हो, वो पढ़ने से पढ़ाई होगी, ये अर्थ खुलेगा, गलती की बात दिखती है। मैं तो ये तो आप आरंभ से पढ़ सकते हैं, सब पढ़ करके पढ़ सकते हैं, सब शास्त्र आदि पढ़ करके गीता पढ़ सकते हैं, और शास्त्रों को न पढ़ कर सीधा गीता ही पढ़ सकते हैं। गीता ऐसा स्वतंत्र ग्रंथ है कि ये उन शास्त्रों के अधीन नहीं है, क्योंकि उस शैली का ही वर्णन नहीं है इसमें, शास्त्रों की शैली का वर्णन नहीं है, वो भी आ गया है। जैसे शास्त्रों में विशेष करके जगत का, जीव का, परमात्मा का वर्णन होता है, तो हमने जगत का वर्णन कर्म योग बता दिया, जीव के वर्णन में सांख्य योग बता दिया, परमात्मा के वर्णन में भक्ति योग बता दिया, तो ये तीनों ही 15वें अध्याय में भीषण आता है। इनका वर्णन शास्त्रों में आता है, जीव आत्मा क्या है, परंतु उसकी शैली और इस तरह की है, गीता के साथ शैली मिलती नहीं। पहले हम ग्रंथों को पढ़े, फिर गीता हमारे सीख समझ में आ जाएगी, ये बात नहीं है। शैली दूसरी है, वो शैली दूसरी है, वो शैली पहले पढ़ रहे, फिर गीता का ठीक सरल अर्थ समझ में आ जाए, ये हमारा विश्वास नहीं है। फिर पंचायती पड़ेगी, हलचल मचेगी, ठीक तरह से जानना चाहे, अरे नहीं तो वक्त ठीक है, बाबा वाक्यम पर मानोगे से लोग इससे पढ़ो तो पढ़ते बनाए। तो कर्मों का और त्याग का दो का बात बताए, संन्यास का त्याग का मन, कर्म योग का सांख्य योग की बात बताई, तो अब भगवान बताते हैं कर्मों के त्याग के विषय में लोगों के मत। 4 लाइन में है, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कोई उपदु। कई कवि लोग काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं, और कई सर्व कर्म फल त्याग, संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग विचक्षण कहते हैं, और कई त्यागन दोष वित्तीय के कर्म पर मनीषिना, कई कर्म के विषय में दोषों की तरह कर्मों का त्याग कर रहे थे, दोष जैसे काम क्रोध लोभ वो आदि दोष है, इसका त्याग कर, ऐसे त्याग कर देना चाहिए कर्मों का। और कई कहते हैं भाई त्याग ठहरो ठहरो, त्याग कर दे, यज्ञ दान तब न त्याज, यज्ञ दान तब का त्याग मत करना भाई, तो करना, ये 4 मत बसाए, 4 मत बसाकर निश्चय किया। अब भगवान के मैं निश्चय सुनो, मैं तत्र त्यागे, अब त्याग के बोले मेरा निश्चय सुनो, ये तो कवियों का है, पंडितों का है, विचक्षण का है, उनका है, ये तो मनुष्यों का मेरा निश्चय सुनो, निश्चय सुनो मैं तत्त त्यागे भरत सत्तम, त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधे संप्रगित, त्याग है ही पुरुष श्रेष्ठ। वो तीन तरह का है, सात्विक राजस तामस, ऐसा कहकर अब मेरे सुन ये बात कही भगवान ने। अब बताते यज्ञ दान तप न त्याज्यम, यज्ञ दान तप न त्याज्यम, ये कर्म न त्याज्यम दोष, यज्ञ दान तप न त्याज्यम अपर है। ये चौथा जो मत है तीसरे श्लोक का उत्तरार्ध, तो उसको भगवान ने कहा कि ये ठीक है, यज्ञ दान तप न त्याज्यम, परोपकारी वित्तीय होता तो हमारा मत इतना और है कि करते हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, न करते हो करना शुरू कर देना चाहिए, इतना उसमें सुधार कर दिया। कार्य में होता है क्यों महाराज, कि यज्ञो दानम तपस से यज्ञ दान तप अगर मिलाया हो बताया आगे, यज्ञो दानम तपस से पावना मनीषी नाम, मनीषी पुरुष है फल त्यक्त्वा मनीषी नाम, फल का त्याग कर करने वाले हैं उनको ये पवित्र करने वाले हैं। तो पावनानी कहने का मतलब एक एक पवित्र करने वाला, यज्ञ पवित्र करने वाला, दान पवित्र करने वाला, तप पवित्र करने वाला है, महान पवित्र बनाते, इस वास्ते इनका त्याग नहीं करना चाहिए, इसका अनुष्ठान तो करना चाहिए। परंतु तो कैसे करना चाहिए, एताने विदु कर्माणी संगं त्यक्त्वा फलं, आसक्ति और फल इच्छा का त्याग, फल का त्याग तो उन्होंने भी कहा सर्वकर्म फल त्याग प्राप्त उस त्याग विशिक्षण, पर फल के त्याग है, फल के त्याग त्याग साथ आसक्ति का त्याग भी कर देना चाहिए, फलेच्छा न रह जाए, क्योंकि फलेच्छा तो फले से तो नहीं बच जाते, पांचवें अध्याय में क्या करे फल में आसक्त तो बन जाता है, इस वास्ते फल का त्याग करना है, पर फल के त्याग के साथ में फल का त्याग के साथ आसक्ति का त्याग भी करना चाहिए। ये नया उसने जोड़ दिया, एतानि अपितु कर्माणि, और एतानि अपितु कर्माणि, एतानि करे यज्ञ दान तप तीन जो वर्ण आ रहा है, इनके सिवाय दूसरे जो कर्म है अवश्य कर्तव्य कर्म है, जैसे प्याऊ लगाना है, बगीचा बनाना है, धर्मशाला बनाना है, लोगों के हित के लिए औषधि आदि का प्रबंध करना है, अन्न क्षेत्र बनाना है, वस्त्र दान करना है, आदि ऐसे काम भी करना चाहिए, अपितु और भी ऐसा है, जैसे यज्ञ दान तप है इसे एतानि अपितु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलं, संग और फल आसक्ति का त्याग करते कर्तव्यानि इति जरूर करना चाहिए, इति मे निश्चितम मतम उत्तमम, मेरा निश्चय किया उत्तम मत है, सबसे श्रेष्ठ मत है मेरा। एक बात और बता, गीता का अभ्यास करने वालों के लिए बढ़िया बात, 39वें श्लोक तो 40वें से उपसंहार होगा, दो प्रकरण होगा, एक 12 तक होगा, एक 13 से 40 तक प्रकरण होगा, तो 40 तक प्रकरण होगा, इसमें 39वें श्लोक तक तीन तीन श्लोकों का एक एक प्रकरण है, गीता अभ्यास करने वालों के लिए बड़ी काम की चीज है। पहले तो एक में प्रश्न पूछ लिया, दो में दूसरों के मत बता दिए, ऐसे तीन श्लोक हो गए, और निश्चय भगवान ने कहा तो निश्चय के भगवान ने तीन श्लोक बता दिए, चौथा पांचवा छठा, और इसके बाद भगवान ने कहा भाई तीन प्रकार का होता है तप, तो वो तामस रज सात्विक, ऐसे तीन तरह का है, इसका वर्णन करने में तीन श्लोकों को बता दिया, तो तीन श्लोक इसमें खर्च कर दिए, तो ये भी तीन श्लोकों का ही प्रकरण है। इसके बाद 9 श्लोक हो गए, तो फिर त्यागी का वर्णन कर दिया, 10, 11, 12 में त्यागी का वर्णन कर दिया, अब 13 से सांख्ययोग का वर्णन होता है, तो कर्मों के होने में 5 हेतु है, उन 5 हेतुओं का वर्णन करता 3 श्लोकों में, 13, 14, 15 पंचेते पंचेतानि महाभाव यान से पंचेते तस्य हेतु तक, ये इनका वर्णन कर दिया 5 हेतुओं का, ये 3 श्लोक हो गए। इसके बाद आत्मा अकर्ता है, आत्मा कर्ता नहीं है। सांख्य योग की खास बात तो ये कर्ता नहीं है, कर्ता मानने वाले की निंदा, न कर्ता मानने वाले प्रशंसा, और कर्तव्य में कर्म प्रेरित कर्म संग्रह को तीन श्लोकों में ये बता दिया। इसके बाद ज्ञान कर्म और कर्ता तीन तरह के होते हैं, ये मेरे से सुन एक श्लोक कह दिया 19वां। फिर ज्ञान का वर्णन तीन श्लोकों में, ये एक श्लोक हो 20 में, फिर 20, 21, 22 में ये सात्विक राजस तामस ये तीन तरह का ज्ञान बताया। फिर बता दिया महाराज सात्विक राजस तामस कर्म, पहले त्याग बताया था, अब तीन श्लोकों में कर्म बता दिए। तो सांख्य की दृष्टि से कर्म कैसे होते हैं और कर्मियों की दृष्टि त्याग कैसे होता है, ये तीन श्लोक होता है, ये तीन श्लोक ऐसे बता दिए। इसके बाद कर्म तीन तरह के, तो त्याग भी तीन, त्यागी होते हैं त्यागी भी, कर्म करने वाले वही तीन तरह, 26, 27, 28 इसमें बता दिया। अब एक श्लोक जैसे बताया था वह कि ज्ञान और कर्म और कर्ता तीन तरह से प्रतिज्ञा, ऐसे 29वां श्लोक बताया, 19 तरह ही बुद्धि भेदी सुनो, ये दो श्लोक अलग अलग हुए। अब बुद्धि के भेद है सात्विक राजस तामस, ये 30, 31, 32 सुना दिया, और धृति के भेद है 33, 34, 35 सुना दिया। अब 36 में पहले प्रतिज्ञा कर लीजिए, शुक्र तीन भेद होते हैं, तो वो 19वां है, वो एक 29 का और एक 36 का, तीन श्लोक ये हो गए प्रतिज्ञा के, तीन श्लोक ये है, तीन प्रकार की बात है। तो भगवान ये बात बताई है, तीन प्रकार सुख है वो भी तीन तरह का होता है, तुम सुनो। तो सुख तीन तरह का बताया, तीन से हो गया 39 श्लोक, और 40 में उपसंहार कर दिए, तो 13 प्रकरण बता दिए तीन तीन श्लोकों के, ये बात है खास 40। और 40 के बाद 48 तक वो प्रकरण फिर दूसरा चल पड़ा है, ये तीन तीन श्लोक दो में ही आता है, सांख्य योग और कर्म योग की विभिन्न बात बताई, इसमें ये बात हुई। अब ये बतावे निश्चय किया मेरा उत्तम मत है, निश्चितम तुम 6 श्लोकों बता दिया। अब वो तीन तरह का है, तो पहले तामस बताया, फिर राजस बताया, फिर सात्विक बताया। क्या त्याग, संन्यास का तत्व मान जाना चाहते हैं तो त्याग में मेरा निश्चय सुनो, त्याग तीन तरह का है, सात्विक राजस तामस। एक बात इसमें और विलक्षण है, वो भी ध्यान देकर सुन लो आप, गीता भर में जहां कहीं वर्णन आया है सात्विक राजस और तामस का वर्णन, क्रम यही है, सगे सगे तामस है राजस है सात्विक, पर यहाँ तामस पहले गया राजस पहले गया, पर सात्विक किसी का उल्टा कर दिया है, यहाँ ये बात उल्टी है। ऐसे उल्टी बात और जगह भी है, पर गुणों की उल्टी बात एक ही जगह है, और सब जगह सत्व रज सत्व रजतम इति गुणा ये सात्विक भाव राजस्त्र ज्ञान कर्म आदि चिंतन है, तो पहले सात्विक है फिर राजस है फिर तामस है, इसमें कर दिया उल्टा मतलब। नियत संन्यास कर्मो थे, नियत जो कर्म है जिसके लिए अवश्य कर्तव्य कर्म है, वर्ण को लेकर आश्रम को लेकर व्यक्ति को लेकर, जैसे पुरुषों के कर्तव्य कर्म अलग है, स्त्रियों के कर्तव्य कर्म अलग है, गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य अलग है, संन्यास है वानप्रस्थ है संन्यास के कर्म अलग है, इस तरह से ही ब्राह्मणों के कर्म अलग है, क्षत्रियों के अलग है, वैश्यों के अलग है, शूद्रों के अलग है, ये 41 से आगे चलेगा, इनके काम अलग अलग है, सात्विक राज का भी कर्म है। तो करने जाए कि कर्मों के भेद बताए, तो ये तामस कर्म का पहले वर्णन किया यहाँ पर, ये उल्ट पुलट कर दिया, इसका क्या कारण है, भाई सब कारण तो कसो सब कारण जान ले जाता भगवान जाने, हमारे समझ में आए हम कहते अपन पता नहीं, तो क्या जानते ये जानते हम तो कि सात्विक राजस तामस कहे तो भगवान ने यहाँ पर एता नपित कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पास निश्चितम मतम उत्तम निश्चय किया उत्तम मत भगवान ने बताया। ये ही अगारी सात्विक कर्म होगा, कार्य मित्ति वृहत कर्म नियतं क्रियते संगम त्यक्त्वा फलं सेवा सत्याग सात्विक मत है। तो सात्विक मत है वही भगवान का मत है, भगवान मत है वही सात्विक है। अब पास पास ली तो पुनरुक्ति दिखती, ये तो अपने कह दिया आपने। तो अपने ऐसे करो कि पहले तामसी को लोगो पहले राजसी को लोगो तो मन कान खड़े हो जाएंगे भाई तामसी राजसी सात्विक क्या है। तो सात्विक बताया कार्य मिति व्यत कर्म, कर्तव्य समझ कर कर्म किए जाए नियत हो कर्म और संग और फलाशीता त्याग किया जाए वो सात्विक से होता है। ये भगवान ने अपने कहा एकता नहीं उसको संगम तुम्हारे फला नहीं चाहे अरे कर्तव्य नहीं थी ये बार से ये निश्चित किया मेरा मत है। तो निश्चित मत किया वही उत्तम मत है, उत्तम मत है वही निश्चय किया भगवान का मत है। दोनों की एकता है, पास में पुनरुक्ति दिखेगी कि अब पुनरुक्ति नहीं हुई। अब तामस दास कह दिया ना तो उस मनुष्य की बुद्धि लग जाती है तो देखते इनसे श्रेष्ठ कौन सा है। तो श्रेष्ठ तो भाई सात्विक है, गुणों की दृष्टि से तामस राज सात्विक बताया और उसमें अपनी दृष्टि से निश्चय मैं सुनो तत्व मेरा निश्चय सुनो तो भगवान का निश्चय वो सात्विक ही हुआ। तो सात्विक है वो भगवान का निश्चय हुआ और भगवान का निश्चय वो सात्विक हुआ। सबसे श्रेष्ठ भगवान का मतलब सबसे श्रेष्ठ, ये बात दृढ़ बताने के लिए भगवान ने ऐसे क्रम का वर्णन किया है। ऐसे इसका संन्यास से महोबहो तत्व संवेद त्याग ये त्याग का विवेचन भगवान ने किया विशेषता से। तो तामस क्या है कि नियत जो संन्यास नियत कर्म है जिसको अवश्य करना चाहिए ऐसा कर्म है उस कर्म का त्याग कर देता है उसको उचित नहीं है न उपपद्यते उपपद्य नहीं ठीक नहीं है उचित नहीं है पर मोह मोह से मूर्ता से त्याग कर देता है वो तामस त्याग होता है। क्योंकि तमस पर ज्ञान निधि मोहनम सर्वदेही नाम, तमो गुण है वो अज्ञान है मोहन है सबको मोहित करने वाला है। तो मोहत्व से परित्याग होने से ये तामस हो गया था, मोहत्व से परित्याग विचार शक्ति नहीं है विवेक नहीं है कोई सोच समझ नहीं है ऐसे छोड़ दिया गया। तो समझे तामसी आदमी है तमो गुण मूर्ता है मोहत्व से परित्याग, तो मूर्ता से त्याग करे वो तामसी त्याग करे अधोगति तामस अधोगति उनकी है। और दुख मिलती है तो काया क्लेश भयात्यजे के जो कर्मों कर्म में दुख होता है क्लेश होता है याद करना पड़ता है ये यो करना पड़ता है भगत पर परिश्रम करना पड़ता है काया क्लेश शरीर में कष्ट होता है नींद कम होती है आलस कम है प्रमाद कम है तो काया क्लेश भयात्यजे तो ये सुख के लिए दुख समझ कर त्याग करे ये है राजस्थ रागा तो कम रजोगुण रागा तो ये राग के कारण त्याग करते हैं वो त्याग राजस होता है। तो राजस त्याग से क्या होता है कि सकृत्वा राजसम त्यागम नहीं बस त्याग फलम लगे त्याग का फल नहीं मिला त्याग फल क्या त्यागा शांति अनंतरम से ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति निरंतरम बारह का बारह। तो फल त्याग करते शांति मिलती है ना ध्यान कर्म फल त्याग तो ये करो त्याग सकृत्वाराजसम त्यागम नहीं बस त्याग फल शांति नहीं मिलेगी अशांति रहेगी क्यों रजोगुण को पकड़ा है तो हृदय में तो ऐसी बात है ऐसे तामसी को पकड़ा तो तामसी में यही बात है शांति वहां कहाँ है तो उसमें नहीं मिलेगा। तो फिर किसको मिलेगा महाराज तो बता मैं देखो भाई कार्य वृत्ति कर्म नियत तीन श्लोकों में विशेषता से त्याग का फल बताते हैं असली बात बताते हैं न द्वेष या कुशल कर्म कुशल नानुसते मनुष्य को करना चाहिए वो कर्तव्य कर्म करना है और नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है। तो करना चाहिए वो कर्म करे और नहीं करना चाहिए वो न करे इसमें एक सावधानी बताते नहीं करने में भी सावधानी करने में भी सावधानी सावधानी ही साधना है हर एक काम ठीक तरह से किया जाए तो वो सावधानी साधना हो जाती है, साधना कल्याण करने वाली चीज। गीता के लिखने से हमें ज्ञान हुआ, वर्षों व्याख्यान देता रहा गीता और कहता रहा, परंतु गीता का विवेचन जब लिखवाने लगे तब एक बात नई बात मिली हमारे को, बिल्कुल मनुष्य जो कल्याण है, उद्धार है, भगवत प्राप्ति है, तत्व ज्ञान है, जीवन मुक्ति है, संसार से अपना उद्धार कर लेना कहते हैं जिसको, इसके लिए आप उल्टा अर्थ मत लगाना। मैं एक बात कह रहा हूँ, उल्टा अर्थ मत लगाना। कल्याण के लिए नया काम कुछ करना ही नहीं, जो कर्म है जहाँ है वहाँ ठीक मर्यादा के अनुसार कामना का त्याग करके और पक्षपात का त्याग कर सीधे सीधे कर्म किए जाओ, मुक्ति हो जाएगी। जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय चिंतन और समाधि किसी की जरूरत नहीं, एक बात। गीता की जो अलौकिकता कहते हैं इसमें कुछ विलक्षण बातें हैं जिसको सनाती नहीं, सनातनियों का तो ग्रंथ है ही है, वैदिक ग्रंथ है ही गीता जी, परंतु जो वैदिक ग्रंथों को नहीं मानते, जैसे मुसलमान है, ईसाई है, जय बौद्ध है, जैसे पारसी है, इतने ही समझे। मनुष्यों में विशेष समुदाय इतने ही, एक हिंदू समाज है सनातन सिद्धांत है, एक मुसलमान समाज है, एक ईसाई समाज है, एक पारसी समाज है, एक यहूदी समाज, बहुत थोड़ा रह गया है, बहुत कम हो गया है वो, पर वो समाज इनसे अलग है हिंदुओं की तरह। तो इनमें किसी समाज का कोई ज्ञान हो, सबके लिए गीता समान रीति से कल्याण करने वाली है। तो अपनी अपनी मर्यादा में फल आशिकता त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, पक्षपात छोड़ करके, ठीक तरह से अगर कर्तव्य कर्म पालन करे तो उस कर्म से उनका कल्याण है, वहां उसी जगह रहते उसका कल्याण हो जाए। ऐसी विलक्षण बात भगवत गीता में एक अलौकिक बात बताई है। व्यवहार में परमार्थ भर दिया, व्यवहार में परमार्थ भर दिया, व्यवहारिक काम है, उन व्यवहारिक कामों में भी ऐसी एक युक्ति बताई, ऐसी एक अटकल बताई, ऐसी एक तरकीब बताई भगवान ने, वो काम करते हुए आप अपने परमात्मा की प्राप्ति करो। भाव बदल दो, भाव भाव बदलते ही और जाता है, जैसे गाड़ी खड़ी है एक लाइन पर, आगे वो पॉइंट बदल दिया जाए तो गाड़ी और ही जगह चले जाती है। ऐसे पॉइंट बदलने से आप संसार का काम करते हैं वो करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे, नहीं तो नरकों में, स्वर्ग में, स्वर्गी में इधर जाती है लाइन, इधर जा रही है, पॉइंट बदल दिया, अपने स्वार्थ का त्याग कर दिया, दूसरे का हित भर दिया भीतर में कि सबका हित कैसे, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का त्याग कर दिया, ये त्याग करके काम करते हो गृहस्थ का है जैसे ही काम, कल्याण हो जाएगा। भले मुसलमान हो, भले हिंदू हो, भले पारसी, कोई किसी संप्रदाय का, हिंदुओं में वैष्णव हो, शैव हो, शाक्त हो, गणपत हो, सौर हो, कोई क्या हो, केवल ये बात है। ऐसे भाई बहनों के लिए, भाई हो, बहन हो, कन्या हो, जवान हो, बूढ़ी हो, माई हो, भाइयों में बालक हो, जवान हो, बूढ़े हो, समझते हो न समझे, सर्व शक्ति संसार शरीर में शक्ति हो ना हो, बूढ़े हो गए कोई परवाह नहीं, रोगी हो कोई परवाह नहीं, आप भाव बदलते परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। कितनी विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी एक विचित्र बात है। हमें तो भाई वर्षों तक व्याख्यान देते हुए फिर जाकर मेरी हृदय में मिलती नहीं है, मिली नहीं है, ऐसी विलक्षण बात अलौकिक विचित्र बात है भगवान की बताई हुई। तो इस प्रति से चलो तो गीता बहुत विलक्षण एक ग्रंथ आप लोग हाथ लग जाएगा। कितनी विचित्र बात, किस मुक्ति के लिए कई तरह के उपाय बताए, वो केवल गृहस्थ में रहते हुए पक्षपात मत करो, स्वार्थ की बुद्धि मत करो, सबके हित की बुद्धि करो, सर्वभूति थे प्राणी मात्र का हित कैसे हो, और रात दिन काम करो, निक में मत रहो, सब काम करो और फल की इच्छा मत करो, आशुति त्याग करे, पक्षपात त्याग करे, सबके हित की दृष्टि काम करते हो, जाओ वहीं काम करते हो, ऐसे ही काम दुकानदारी करते हुए, व्यापार करते हुए, आयुर्वेदिक काम करते हुए, वैद्यकी करते हुए, अध्यापन कार्य करते हुए, पढ़ाते हुए, सब काम करते हुए, वकालत करते हुए, डॉक्टर रहते हुए, सब काम है वो काम ठीक तरह से गीता के उसे अंतशास्त्र करो, स्वार्थ कर अभिमान का त्याग करो, दूसरे का हित हृदय में भर रहे तो पर हित बस दिन के मन माही चिंतन तक दुर्लभ कसुर है, ऐसे भगवत गीता वृक्ष बात कहती। तो न द्वेष या कुशल कर्म, अकुशल कर्म है जो पाप कर्म है, जो काम्य कर्म है, कामना को ले चलते हैं कि बांधने वाला है, ये अकुशल कर्म अच्छे कर्म नहीं है, बांधते हैं प्राणी को तो बांधने का काम है नहीं, तो अकुशल कर्मों का त्याग करना चाहिए, परंतु न द्वेष पूर्वक नहीं, त्याग करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करना, कर्मों का त्याग करो पर साथ में द्वेष रखोगे तो उसका द्वेष का बड़ा बंधन हो जाएगा, इस बार न द्वेष अकुशल कर्म, समझे, जैसे सात्विक त्याग बताया तो ये त्यागी है, तीन श्लोकों में त्यागी का वर्णन है, और कुशल नानुसज्जते, कुशल कर्म है निष्काम भाव से काम करना है, सबके हित का काम करना है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार करना है, समय के अनुसार करना है, संयोग के अनुसार परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति के अनुसार कर्म करना है, ये कर्म करने में ये अलग अलग होगा, जैसे भोजन करने गए तो और कर्म है, स्नान करने गए तो और कर्म है, शरीर को साफ सत्य पेशाब गए तो दूसरा कर्म है, ये कर्म अलग है, फिर इन कर्मों में अलग होते हुए भी भाव में स्वार्थ का त्याग, आसक्ति का त्याग, पक्ष का त्याग, कामना का त्याग, इनका त्याग करके सबके हित की बुद्धि रखते हुए कर्म करो, ये साधारण काम, साधारण काम, बना रसोई बनाओ, बाल बच्चों का पालन पोषण करो, घर के बर्तनों को साफ करो, झाड़ू दो, स्वच्छता निर्मलता घर की करो, करो इस भाव से कि भगवान का घर में, ये भगवान का दरबार है, भगवान का काम करने को हमें मौका मिल गया, जैसे मंदिरों में झाड़ू लगाते हुए आनंद आता है कि आज हमारा इतना समय बड़ा सार्थक हुआ, जो हम भगवान के दरबार में यहाँ झाड़ू लगा रहे, यहाँ सफाई कर रहे हैं, ऐसे ही घर में भगवान का घर समझे, अपनी ममता ही नहीं है, भगवान ने भेजा है, पहले जहाँ जन्म दिया वहाँ भेज दिया, फिर ब्याह करके जहाँ भेज दिया भगवान ने, अब वो घर अपना है, तो मेरा तो कोई घर है ही नहीं, ना पीहर है ना ससुराल, ये तो भगवान का घर है, उनका दिया हुआ घर है, तो उनका काम करेंगे हम तो भगवान का, ऐसे वो काम किया तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मंदति मानव, अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करेगा, सभी नीचे उतरे ही नहीं है, व्यवहार हम देखते हैं कि छोकरा होते छोटे छोटे बच्चे दो दो ढाई वर्ष के, तो कोई ऐसा वो अटकल समझ लेता है, नीचा रख रोड़ा रह गया, अब कोई न कोई तो गोदी लेना ही पड़े, क्या करे, रोड़ता है वो उनको, पर एक अटकल आ गई कि अपने रोना ले लो बस ठीक हो जाएगा, अपनी गोद लेगा कोई, इस तरह से भगवान के काम के बिना ऐसा रोने लग जाए, हम तो भगवान का ही काम करेंगे, हर से भगवान गोदी से डाले मस्ती से, जो कर रसोई बनाओ, बर्तन मारो, पानी भरो, कपड़ा धोओ, स्नान करो, बच्चों को स्नान कराओ, घर की सफाई करो, बर्तनों को सफा करो, कपड़े साफ करो, जो करे भगवान से जी चाहिए उसे, ठाकुर जी आपका काम कर रहा हूँ, एहसान करो ठाकुर जी पर, जैसे बच्चा दूध पीता है तो माँ पर एहसान करता है, देख माँ तेरे कहने से मैंने दूध पी लिया, हाँ बेटा निहाल कर दे पी ले, ये पी ले तू पी ले, ऊँ करता है पहले, फिर माँ को कहकर माँ पर एहसान करके दूध पीता है, माँ कहते मेरे को निहाल कर दे तू पी ले, ऐसे ठाकुर जी को निहाल करने के लिए काम करते हैं हम, रोटी खाए तो भगवान को कहते महाराज आपका हूँ मैं, रोटी खाने से आप राजी होंगे इस बात से कहता हूँ। जल पियो तो इस समय भगवान राजी होते, अपना बालक खा पी ले तो बालक, तो उसे माँ बाप राजी होते। हमारे सदा के पिता तो भगवान है, तुम्हें तो माता पिता तुम्हें तो हम खा लेंगे सो जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए सोते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए रोटी खाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए पानी पीते हैं। क्योंकि माता पिता है वे राजी होंगे, नहीं रहा तो भी ससुराल तो रोटी खाई को भी छोरा सो जाता है, रोटी खाई नहीं वो सो जाता है, और सोता जो महाराज ऐसा तो उठता ही नहीं, अब नींद लगती ऐसी अभी माँ चढ़ उठ रहे खा ले रोटी खा ले बैठ जाए करता वो नींद में एक रस आनंद आ रहा है, वो कौन छोड़े। तो माँ दूध ठीक कर ठंडा कर ला कर देर बैठा भोंग चुना तो पी ले पी सो जाए, माँ ने सुन तो कोई बात नहीं, सर दूध पी ले कोई बात नहीं, भूखा नहीं रहना चाहिए, माँ है ना माँ कर। इस तरह से भगवान है वो बड़ी माँ है, सदा की माँ है। ए माँ तो बदलती, वो माँ बदलती नहीं है, सदा हुई रहती है। तमेव माता पिता तमेव, माँ की खुशी के लिए तो रोटी खाओ पानी पियो कपड़ा पहनो स्नान करो, माँ खुश हो जाएगी, भगवान प्रसन्न होंगे, केवल भगवत प्रीतर्थ आपकी भक्ति हो जाएगी। सब काम भक्ति, यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्वी कौन कह तत्पुरुष मदर्पणम शुभाशुभ फले रेव मोक्ष कम कर्म बने, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओ। कितनी विलक्षण बात बताई ये गीतम बात बताई, किसी वर्णकार किसी आश्रमकार किसी देशकार किसी वेश में रहने वाले साधु हो चाहे गृहस्थी हो भाई हो चाहे बहन हो छोटा हो चाहे बड़ा हो पढ़ा लिखा हो चाहे मूर्ख हो, भगवान के सब बड़ों करे। ये संसार की योग्यता परमात्मा की प्राप्ति में काम नहीं आती हूँ, संसार की विद्या संस्कृत जानते हो हिंदी जानते हो अंग्रेजी जानते हो उर्दू फारसी जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परमात्मा की प्राप्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा पंडित हो ऐसा ही है बिल्कुल रंथराज है, काला अक्षर भैंस है उसे कुछ समझता ही नहीं बड़ा भले ऐसा ही हो, ठाकुर जी का काम करता है ठाकुर जी से राजी होता है, मैं ठाकुर जी के दरबार में रहता हूँ ठाकुर जी का काम करता हूँ ठाकुर जी का प्रसाद पाता हूँ ठाकुर जी भक्तों की सेवा करता हूँ ठाकुर जी का हूँ बेड़ा पार। बोलो क्या जोर आया बताओ, काम जो कर रहे हैं भाव बदल गया, ये इन सबको भाव बदलना आता है, ये बैठी है ना इनको भाव बदलना आता है और आपको भी आता है हमारे को भी आता है। कैसे बदले, ये अपने पीर की क्या जाती है छोरों के साथ खेलती, मेरे घर आ जाने खबर लूंगी तेरी है ऐसे मेरा घर मानती है, ब्याह होते ही मैंने बदल दिया एकदम, ये घर तो भाई का है मेरे भाई का मेरे पूज्य पिताजी का है मेरा घर तो वो है, पली यहाँ रही यहाँ रोटी यही खाई कपड़ा यही पहना बड़े प्यार से छोटी सी बच्ची से बड़ी सही तेरू कर दिया या पाल दिया, अब कहते घर ये मेरा नहीं। आपस में अपना पण नहीं रखती और देवरानी जेठानी वो अपनी है, बताओ कितनी इतनी बात है आश्चर्य की बात है। वो कहाँ पैदा हुई कहाँ पली कैसे रही कौन माँ बाप है इसके ख्याल नहीं, परंतु देवरानी अपनी दिख है जेठानी अपनी दिख है माँ जाई बहन अपनी नहीं दिख, ये तो उस घर की है उस परिवार की है मैं इस परिवार की हूँ, कितना बदल दिया बताओ। ऐसे भाई लोग भी गोद चले जाते हैं बदल देते हैं, साधु हो जाते हैं बदल देते हैं, हम तो इस घर के हैं। भाइयों बहनों ऐसे आप बदल तो बदलना आता तो है ही, विद्या तो आप जानते ही हो, हम भगवान के दरबार में से भगवान का काम करते हैं, केवल भाव बदल दो वो पॉइंट बदल गया अब लाइन है इधर संसार मिल जाएगी, अब ये तो गढ़ जाएगी भगवान की तरफ। ऐसी विशुद्ध बात भगवत गीता बतलाती है, कैसी मौत की बात है, मौत हो गई है तो मैं द्वेष या कुशल करवा त्याग बन द्वेष बोलू नहीं, कुशल बने अश्रुति बोलू नहीं, त्यागी सत्व स्वभाव इष्ट सात्विक वृत्ति क्षमा उदार था संतोष त्याग वैराग्य मेधावी बुद्धिमान है वो, कितना बुद्धिमान है कि संसार काम करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर ली। यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प हो जाता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानंद तमाहु पंडितम बुधा बुधा पंडितम बुधा, पंडित भी उनको पंडित कहते हैं, घर में रहता हुआ तल तो कर्म फलासन कर्मणी अभी प्रवृत्ति अभी संता प्रवृत्ति काम करता हुआ मशीन की तरह काम करता पर तो फल राष्ट्रपति नहीं है पंडित होगा। कितने विलक्षण बात है, कितनी अलौकिक बात है, सब काम करते सर्व कर्माने भी सदा कुंभ मद में पास है, सब काम शब्द करता रहे भगवान का आश्रय, भगवान का कर्म का फल का व्यक्ति वस्तु का आश्रय नहीं इसकी परवाह नहीं, आश्रय रुके सकल आसरो छोड़ा आसरो लीनो कुंवर कनाई को मन मारी आज मेरो भर जाना नहीं भाई गोबर, और आसरो छोड़ा आसरो लीनो कुंवर कनाई को और कन्हे का आश्रय भाई और हमारा कोई आश्रय नहीं है, एक आश्रो एक बदल एक आश विश्वास एक राम घर श्याम तुलसीदास बहनों भाइयों एक युक्ति बढ़िया बहुत है। कैसी बात बताई गृहस्थी हो साधु और भाई और बहन हो छोटा और बड़े और बलवान और दुर्बल हो पढ़ा लिखा हो अपन हो कितनी बात नहीं दे बता सकते तक्तु कर्माने कर्म छोड़ नहीं सकते कर्म तो करना पड़ेगा, देहधारी पुरुष खाना पीना नहीं करेगा सो स्नान नहीं करेगा अपने घर में झाड़ू नहीं जाएगा क्या नहीं करेगा, वो तो देहधारी है शरीर धारण किया है तो कोई कर्म छोड़ नहीं सकते। नहीं दे बता सके तक्तु कर्माणी अशेष सब तरह से कर्मों का त्याग कर नहीं सकता, ये तो कर्म फलत त्याग ही है, फल क्या होगा किसी होता भाई काम करना है वो क्या करना चाहिए क्या नहीं तो करने में सदा सावधान रहे और होने में प्रसन्न, फल तो होने में है होने में सदा प्रसन्न, दुख आवे तो सुख आवे तो बुखार आवे तो और ठीक हो जाए तो धन आवे तो धन जावे तो बेटा जन्म जाए तो पोता मर जाए तो इसमें जैसे ऐसे होना है करना तो भाई ये तो हमारा करना नहीं है तो होना है होने में रहे प्रसन्न जोर कुछ हो जाए और करने में सावधान ठीक तरह से भगवान ने आज्ञा दी है संत महात्मा आज्ञा देते हैं शास्त्र आज्ञा देता है अपनी मर्यादा के अनुसार वो करना सावधानी के साथ में उल्ट पुलट नहीं करना इधर उधर गड़बड़ी नहीं करना है लाइन पर चलना ठीक है। लाइन पर चलता हुआ इंजन 30 40 50 डब्बा को लेकर चला धाधन और लाइन से गिर जाए तो खुद चलना बंद हो जाए कुछ नहीं कर सकता जो खुद 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 चल नहीं सकता लाइन उतर गया वो कर गया ऐसे जो लाइन उतर जाता है वो गृहस्थी और साधु भाई और बहन हो लाइन उतर गया भाई अब क्या फंस जाएगा अब नहीं चल सकता नीति इतनी गाड़ी लेने वाला इंजन इतना बलवान इंजन है परंतु लाइन उतरने के बाद में कुछ नहीं काम सकता ऐसे संसार की मर्यादा है शास्त्र की मर्यादा है उसके अनुसार काम करे धरा 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 कर मरा दूसरों का कल्याण होता है देखने से सुनने से बातें सुनने से मन में विलक्षण आती अनुभूता आती विचित्रता आती उत्साह आता है। माताएं अपने अपने घरों में ठीक तरह से काम करती है मर्यादा के अनुसार तो सुनने वालों को खुश होती है सुनने वाले खुश हो जाते हैं। एक हमने कहानी सुनी कोई संत महात्मा थे तो एक जगह ठहरे तो एक माई ने बहुत आग्रह किया महाराज यहाँ पर ठहरो तो वहां पहुंचा देती भोजन पहुंचा देती सब सब क्रिया करती महाराज कोई कमी नहीं आ जाए बड़े भाव भक्ति से उसने काम किया महाराज चातुर्मास में रहे जाने लगे तो उस माई ने कहा कि महाराज फिर दर्शन देव ऐसे सत्संग फिर हमें मिलती रहे तो सत्संग से स्वाभाविक उद्धार होता है साधन भजन ध्यान करके कल्याण करते हैं वे तो कमा कर धनी बनते हैं और सत्संग में चले जाते हैं वे गोद चले जाते हैं। अब जैसे मैं गीता जी की बात कही कि भाई ये सांख्य कर्म योग ये है तीन तीन श्लोक ये है क्या जोर आया पर सीख है याद करो जोर आता है ख्याल करना पड़ता है, तो कमा कर धनी बनते हैं। और सत्यों गया कमाया और धन है जो पूरा कर, अब क्या जोर आया। ऐसे सत्संग में पारमार्थिक बातें मिलती है मुफ्त में, तो उस माई ने कहा कि महाराज ऐसा सत्संग और मिले फिर आप पधारो। कि माता जी ठीक बात है, कागज दूंगे। ना मैया कागज नहीं देना, बिना लिखा हुआ कागज आएगा तब आएगा, बिना लिखा कागज आ जाएगा अब आएगा। ठीक है महाराज चलेंगे सब। अब कई दिन रहे, महीनों तक रहे, कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, ऋषि आए, कहा मारा अमुक गांव में एक माई है बड़ी ध्यान में तत्पर तत्पर जप में और दूसरों की सेवा करने में, दीन दुखियों की सेवा में, गरीब बच्चे हो उनका पालन करने में, पढ़ाई कराने में, वो हरेक काम में ऐसी है कि सबको सुख है। गांव भर में महाराज उस एक व्यक्ति के कारण से सुखी हो गया गाँव, ऐसी वो माई है। संत बोले भी कागज आ गया अब जाएंगे, हम तो बिजली कागज आ गया, कागज आ गया क्या तो जाएंगे पहुंचे। तो ऐसा कागज पहुंचे तो बड़े बड़े आ जाए, बड़े बड़े संत महात्मा, चलो भाई वहां ठीक हो, ऐसी माता जी है कोई, ऐसे माता जी के हम भी दर्शन करेंगे। समझे, संत महात्मा दर्शन करने को आते हैं, ऐसे उत्तम करने वाले की हाथ की रोटी खाने के लिए लालायत होते हैं संत महात्मा कि ये मत मैया ये माता जी रोटी दे दे मैं खा लूं। अन्न पवित्र, जो अन्न पवित्र है इसके कारण से मैं पवित्र हो जाऊंगा, ऐसा उनका पवित्र भाव होता है। तो पवित्र भाव वालों के अन्न भी पवित्र होता है, मन पवित्र हो जाए, आत्म पवित्र हो जाए। एक बाबा जी गए भिक्षा के लिए, तो माता ने कह दिया महाराज यही बैठ पालो, ले जाए क्या करो यही बैठ। पाने लग गए, पाने लगे तो पास बदलेगा, ए मैया मैया मैया, महाराज क्या हुआ, वो जहाज डूब रहा है, वजल में जहाज डूब रहा है वो। माता जी बोली महाराज आप पचा नहीं सके, मेरे घर का अन्न आपको पचा नहीं, क्यों हल्ला करते हो, कोई डूबता है कोई तरता है कोई करता है, क्यों हल्ला करते है? मेरे घर का अन्न तो अच्छा है पर आपको पता नहीं, निकल गया ना बाहर निकल गया, उल्टी हो गई, पर बस सही है। तो पवित्र अन्न है महाराज, उससे बहुत विलक्षण बुद्धि आती है, विलक्षण आवाज हो जाती है। ये माताओं में ऐसी विलक्षण विलक्षण माताएं होती है जिसके हाथ की रोटी पवित्र हो जाए, उनकी दृष्टि पवित्र हो जाए, उनकी कृपा है वो महाराज पवित्र कर देती है, उनकी प्रसन्नता है भगवान की भक्ति पैदा करते, ऐसी बातें इनमें है कि भगवान की भक्ति है, भगवान की प्यारी है, अपनी मर्यादा पर ठीक से चलती है। तो भाई कोई अगर लाभ लेना चाहे तो ऐसी माताओं से, तो और माताओं को ऐसा बढ़ने चाहिए अपने तो बस त्यागी त्यागी सब समावेश को मेधावी संशय नहीं दे भ्रता सकतम तक तुम कर्मान जैसे ये तो कर्म फल त्यागी सत्यागी विद्य, ये त्यागी का फल है तीन श्लोकों समझे। जो कर्म फल का त्यागी वो त्यागी है, शरीर धारी कर्म तो करेगा ही, कर्म तो करना पड़ेगा, और फल का त्यागी वो त्यागी है। अनिष्टम मिष्टम मिष्टम च त्रिविधं कर्मा, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिष्ट फल होता है, तीन प्रकार कर्मों का फल होता है। भवति अत्यागिनः, जो त्याग नहीं करते उनको खर फल भोगना पड़ता है, ऊंच नीच योनि में जाना पड़ता है। न तो सन्यासी नाम कहते तो सन्यासी को कभी नहीं पड़ता, जो त्याग कर दिए है कर्मों के फल से भी लिप्त नहीं होते, बंधे हुए नहीं रहते हैं। स्वर्ग नरक आदि में जाना पड़ता है, स्वर्ग में जाना पड़ता है ऊपर जाओ, नरक में जाना पड़ता नीचे जाओ, और मुक्ति योग साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेन, स्वर्ग में जाने निशे नहीं ऊपर पड़ता पड़ा है, नरक में जाओ नीचे निशे नहीं है, और मुक्ति दरोजा सीधा 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 साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पायल जी पर लोग सुमारा। बोलो कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है। भाइयों बहनों मौका मिला है, बहुत विचित्र मौका है, भगवान की कृपा का अवसर एक बहुत विचित्र। भगवान ने अलौकिक कृपा कर दी, विलक्षण कृपा कर दिए है लोग, स्पेशल कहने वैसे कृपा, ये प्राइवेट को विलक्षण कृपा कर दी है, ऐसा मौका मिल गया तो अपने लाभ ले लो। नारायण नारायण नारायण, इस बार में श्लोक पर कर्मों का विशेष खूब लिखा है, साधक संजीवनी में बार में श्लोक के ऊपर कर्मों का विशेष ठीक लगा।
नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी समझ नर गीता नहीं गासी, समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी ए जी पच पच मर सुख भोगा माही रीता रह जासी। कान खोल कर सुन मारा मनवा नहीं तो पछतासी भाई, कान खोल कर सुन मारा मनवा नहीं तो पछतासी, संत बिना मुक्ति रो मार्ग कोई न दर्शासी, ओ संत बिना मुक्ति रो मार्ग कोई न दर्शासी, समझ नर गीता नहीं गासी, समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी हो पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी कूड़ कपट कर माया जोड़े कोड़ी संगन जासी, कूड़ कपट कर माया जोड़े कोड़ी संगन जासी, मरता ही सब माद्या भाई खोस खोस खासी, हो मरता ही सब माद्या भाई खोस खोस खासी, समझ नर गीता नहीं गासी, समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी ओ पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी। खेल तमाशा में दिन खोवे काल करत हासी भाई, खेल तमाशा मैं दिन खोवे काल करत हासी, उमर का दिन कट रया सारा भुगतो चौरासी भाई, उमर का दिन कट रया सारा भुगतो चौरासी, समझ नर गीता नहीं गासी, समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी ओ पच पच मर सुख भोगा माही, रीता रह जासी। लिपट्यो लोभ मोह ममता में मारे पड़ो उबासी, लिपट्यो लोभ मोह ममता में मारे पड़ो उबासी, इया करासू नहीं टलेली जन्म मरण फांसी भाई इया करासू नहीं तलेली जन्म मरण फांसी समझ नर गीता नहीं गासी समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही रीता रह जासी ओ पच पच मर सुख भोगा माही रीता रह जासी बड़े धनी को शरण ले ले क्यों तू हुयो उदासी भाई बड़े धनी को शरण ले ले क्यों तू हुयो उदासी फेर जन्म नहीं होवे थारो तू है अविनाशी हाँ फेर जन्म नहीं होवे थारो तू है अविनाशी समझ नर गीता नहीं गासी समझ नर गीता नहीं गासी पच पच मर सुख भोगा माही रीता रह जासी ओ पच पच मर सुख भोगा माही रीता रह जासी।